स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, मसीह यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि इन दिनों आज हम उसी अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले अध्ययन में हमने विशेषकर परमेश्वर द्वारा इब्राहिम की परीक्षा लिए जाने व इसहाक का बलिदान चढ़ाने एवं इसहाक के साथ मसीह की तुलना को देखा था कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो हम सबके पापों के बदले में क्रूस पर बलिदान हो गया। परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह को संबोधित किया गया है। तो आइए हम आज के अध्ययन को उत्पत्ति 22 उसके 17 और 18 पद को पढ़कर आरंभ करें, जहां पर लिखा है, मैं तुझे निश्चय ही बड़ी आशीष दूंगा, मैं तेरे वंशजों को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेत कणों के समान असंख्य कर दूंगा, और तेरे वंशज अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे, और तेरे वंशजों के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। मित्रों, यहां पर देखते हैं, और तेरे वंशजों के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर यहां पर किस वंशज की बातें कर रहे हैं? यदि आप गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पौलुस व्याख्या करते हैं और कहते हैं वंशज का अर्थ क्या है। अतः प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उसके वंशज से की गई थी। शास्त्र नहीं कहता है और वंशजों से, जैसे बहुतों की ओर संकेत कर रहा हो, परंतु इसके बदले एक ही की ओर, अर्थात और तेरे वंशज से जो मसीह है। बाइबल में वंशज की यही व्याख्या हमें दी गई है। जब हम गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ते हैं तो पौलुस यह कहते हैं, और पवित्र शास्त्र ने आरंभ से यह जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को धर्मी ठहराएगा, पहले से ही इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया, समस्त जातियां तुझ में आशीष पाएंगे। मित्रों, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को कब सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर ने उसे सुसमाचार तब सुनाया जब वह, अर्थात उसने उसे पुत्र को बलिदान करने के लिए कहा था। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, तेरे वंशजों के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगे, और यह वंश मसीह है। यही सुसमाचार इब्राहिम को दिया गया था। यदि आपको यह पसंद आता है तो अच्छी बात है। मित्रों, मैं यहाँ पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ जिसे रिवाजी तौर से अनदेखा किया गया है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी पुराने नियम के योग्य महान व्यक्ति थे, परंतु वे लोग इतना तेज या चालाक नहीं थे जितने कि हम लोग हैं, और वे इतना नहीं जानते थे जितना कि हम लोग जानते हैं। जो भी हो, मेरा मानना है कि इब्राहिम यीशु मसीह के आने के महान विषय के बारे में और सुसमाचार के बारे में आपसे और मुझसे अधिक जानता था, और इसके लिए मैं उसका सम्मान करता हूँ। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 8 अध्याय उसके 56 पद में, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से आनंदित हुआ, उसने देखा भी और मग्न हुआ। इसलिए वह पहले से ही इस विषय को जानता था, इससे पहले कि हम उसे पहचान पाते। मित्रों, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहीं अधिक बातें प्रकट कर दी थी, परंतु उद्धारकर्ता उस समय तक नहीं आया था। हम लोग आज इस बात को जानते हैं कि वह 2000 वर्ष तक नहीं आए हैं, परंतु मोरिया पर्वत पर जहां इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ाया, वो तस्वीर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान का भी है। परमेश्वर ने इब्राहिम को इसहाक को बलिदान करने के लिए बुलाने के पश्चात मोरिया पर्वत पर चढ़ने के 3 दिन पहले परमेश्वर ने इसहाक को जीवित दे दिया। इसलिए यह मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान दोनों की तस्वीर दिखाता है। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को सुसमाचार सुनाया और निश्चय ही ऐसा वहां हुआ, और तेरे वंशजों के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लगभग सारे संसार में पहुंच चुका है। अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, और यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भी हमारे देश में हमारे बीच बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, परंतु आशीष सभी राष्ट्रों के लिए है, और यह आशीष राष्ट्रों को सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त होगी। लिखा है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, यह विश्वास इब्राहिम में बना रहा, और विश्वास हमेशा कर्म या क्रिया की ओर ले चलता है, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। मित्रों, आगे हम देखते हैं कि इब्राहिम बेर्शेबा को लौटते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया, और वे सब एक साथ बेर्शेबा को गए, और इब्राहिम बेर्शेबा में रहने लगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इब्राहिम को यह संदेश मिला, देख मिल्का को तेरे भाई नाहोर से भी संतान उत्पन्न हुई है। मित्रों, यह अध्याय हमें याद दिलाता है और कुछ इब्राहिम के परिवार के बारे में एक झलक भी देता है। इब्राहिम ने अपने भाई नाहोर को मार्ग में जाते समय हारान में छोड़ दिया था। उसके वंशज का अनुसरण पवित्र शास्त्र में नहीं किया गया है, परंतु कुछ समय के बाद यह वंश इब्राहिम के वंश को भी पार कर लेगा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो उसे भी हम देखेंगे। यदि आप इस पूरे अध्याय के बाकी हिस्सों को पढ़ेंगे तो आपको नाम उच्चारण करने के लिए कसरत करनी पड़ेगी, अन्यथा आप नाम नहीं ले सकते हैं, यह कठिन है। मित्रों, यहाँ पर 22 अध्याय समाप्त हुआ, और अब हम उत्पत्ति 23 अध्याय में प्रवेश करेंगे। हम इस अध्याय में सारा की मृत्यु और इब्राहिम द्वारा गुफा के क्षेत्र को उसके दफनाने के लिए खरीदना, जो मेकपेलेह की गुफा थी, आदि विषयों पर हम देखेंगे। तो आइए हम उत्पत्ति 23 अध्याय के 1 और 2 पद को पढ़ें। सारा 127 वर्ष तक जीवित रही, सारा की आयु इतनी ही थी, और सारा की मृत्यु कनान देश के क्रियत अरबा अर्थात हेब्रोन में हुई। अतएव इब्राहिम सारा के लिए रोने व शोक मनाने के लिए वहां गया। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि सारा की आयु 127 वर्ष की हुई। जब वह 90 वर्ष की थी तब इसहाक जन्मा था। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी मृत्यु के समय इसहाक की आयु 37 वर्ष की थी। मित्रों, हमें यह बताया गया है कि सारा की मृत्यु किरियत अरबा में हुई, जो हारान में है। इब्राहिम को अपनी पत्नी को दफनाने के लिए उस देश में गुफा खरीदनी पड़ी, जो देश परमेश्वर ने उसे दिया था। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा को किसी दूसरे स्थान पर दफनाने के लिए क्यों नहीं ले गया? यह इसलिए हुआ क्योंकि उसे भविष्य के लिए इस देश व जगह से जो आशा थी, वो उस देश और भूमि से थी। और जब हम इस अध्याय के पदों को आगे पढ़ते हैं या इसमें हम बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि यद्यपि दफनाने के लिए सारी सुविधाएं थी, जो अधिक उत्साहजनक नहीं थी, और शायद यह कुछ लोगों के लिए अस्वस्थ करने वाली बात हो, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम यहाँ पर एक महान सच्चाई को देखें। तो आइए हम उत्पत्ति 23 अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ें। तब इब्राहिम अपने मृतक के पास से उठा और हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे मध्य अजनबी और परदेशी हूँ, मुझे अपने मध्य एक कब्रिस्तान दो कि मैं अपने मृतक को मिट्टी देकर उसे अपने दृष्टि की ओट करूं। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने आप को एक अजनबी और परदेशी कहता है, जबकि परमेश्वर ने इस देश को व भूमि को उसे देने की प्रतिज्ञा की है। हम आगे उत्पत्ति 23 अध्याय उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, हित्तियों ने इब्राहिम को उत्तर दिया, हमारे स्वामी हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में एक सामर्थ्य शासक है, हमारी कब्रों में से अपनी पसंद के अनुसार किसी में भी अपने मृतक को मिट्टी दे, हम में से कोई भी तेरे मृतक को मिट्टी देने के लिए अपनी कब्र देने से इनकार ना करेगा। मित्रों, यहाँ पर हित्तियों के द्वारा बहुत ही विनम्र निवेदन किया गया जो वहां पर रहते थे। इन्होंने इब्राहिम से कहा, हमारी कब्रों में से अपनी पसंद के अनुसार किसी में भी अपने मृतक को मिट्टी दे, हमें ऐसा करने में खुशी होगी। इब्राहिम ने उन लोगों पर अद्भुत प्रभाव डाला था और उन्होंने उसे सामर्थ्य शासक कहा। इस व्यक्ति का प्रभाव कुछ और काम के लिए गिना गया। आइए हम उत्पत्ति 23 अध्याय उसके 7 से 9 पद को पढ़ें। अतएव इब्राहिम उठा और उसने झुककर उस देश के वासियों को अर्थात हित्तियों को दंडवत किया और उसने उनसे कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं अपने मृतक को मिट्टी देकर दृष्टि से ओट करूं, तो मेरी सुनो और सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला की गुफा को जो उसकी भूमि की सीमा पर है मुझे दे दे, वह पूरा दाम लेकर कब्रिस्तान के लिए इसे तुम्हारे समक्ष मुझे दे दे। इब्राहिम ने मकपेला के स्थान को पसंद किया और वह उसे खरीदना चाहता था, वह नहीं चाहता था कि उसे कुछ दिया जाए। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो जब तक कि परमेश्वर उसे यह भूमि न दे दे, तब तक वह उस भूमि को खरीदेगा जितनी उसे जरूरत है और वह चाहता है। तो यहाँ पर वास्तव में वह कब्रिस्तान को खरीदता है, अर्थात दफनाने के लिए जगह खरीदता है। मित्रों, मैं पुनः यह प्रश्न पूछता हूँ कि इब्राहिम सारा को कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं ले गया कि वह वहां उसे दफनाए? उसने सारा को यहीं पर इसलिए दफनाया क्योंकि यह प्रतिज्ञा का देश और भूमि थी और भविष्य की आशा यही थी। जब आप बाइबल में से होकर जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 2 महान आशाएं हैं और 2 महान उद्देश्य जो परमेश्वर के पास हैं। एक सांसारिक उद्देश्य है और दूसरा स्वर्गीय उद्देश्य है। उसका सांसारिक उद्देश्य यह है कि पृथ्वी जिसमें मैं और आप रहते हैं वह अनंत काल में प्रवेश कर रही है या जा रही है, यह एक नए नमूने में बदलने जा रही है। वहां पर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी, परंतु वहां पर एक पृथ्वी होगी और यह अनंत काल तक बसा हुआ होगा। यही प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी और उन्हें भी जो उसके बाद आने वाले हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी को किसी कूड़ेदान में फेंकने नहीं जा रहे हैं जिसमें आप और मैं रहते हैं। अपने कार्य पूर्ण होने पर वह ऐसा नहीं करेंगे और न ही पुराने कार की बैटरी की तरह इसे फोड़ देंगे। परमेश्वर इसे छोड़कर जाने वाले नहीं है। वह चाहते हैं कि इसे एक नया रूप दें और नई पृथ्वी जो अनंत काल में प्रवेश करेगी और वहां पर लोग होंगे जो इसे आबाद करेंगे। यही इब्राहिम की आशा भी थी। इब्राहिम चाहता था कि मृत्यु के पश्चात उसे भी उसी भूमि में दफनाया जाए ताकि जब पुनरुत्थान हो तो वह भी सारा के साथ उस भूमि में ही जी उठे। वह यह बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके बाद और कितने लोग आने वाले हैं, परंतु अक्षरशः लाखों लोग मुर्दों में से जी उठेंगे, यह उनकी आशा है। मित्रों, यह एक सांसारिक आशा है और इसे साकार किया जाएगा। वहां ऊपरी कोठरी में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा जो पुराने नियम से सिखाए गए थे और जिनके पास पुराने नियम की आशा थी। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 1-3 पद में कहा गया है, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नए यरूशलेम के बारे में कह रहे हैं जिसे आज वह तैयार कर रहे हैं, और यही वह स्थान है जहाँ कलीसिया जाएगी। यह नया यरूशलेम कलीसिया का अनंतकालीन आवास होगा। यह शिक्षा शिष्यों के लिए बिल्कुल ही नई थी। मुझे डर लगता है कि यह शिक्षा बहुत से मसीहों के लिए भी नहीं हो सकती है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कभी भी यह नहीं कहा कि वह उसे इस पृथ्वी से स्वर्ग में ले जाएंगे, परंतु इसके बदले में वे हमेशा कहते रहे कि वह उसे यह देश यह भूमि देंगे। और इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यही कारण था कि वह सारा को उस देश की भूमि पर दफनाना चाहता था, और यह स्थान उनके लोगों को दफनाने का स्थान बन गया। और उसने भी अपनी इच्छा व्यक्त की कि उसे भी वहीं पर दफनाया जाए, और उसको भी वहीं पर दफनाया गया। मित्रों, इब्राहिम के दफनाए गए जगह की सही दिशा हेब्रोन में है, जो यरूशलेम से लगभग 20 मील की दूरी पर दक्षिण में है। जब आप कभी यरूशलेम जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि यरूशलेम में मंदिर के स्थान पर आप मस्जिद खड़ी है, फिर आपको वहां पर कोई असुरक्षा महसूस नहीं होगी। लेकिन हेब्रोन में पर्यटकों को सचेत रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहां पर पर्यटक और बाहरी लोगों का विरोध किया जाता है। और यह सच है कि आपको मस्जिद में जाने और देखने देते हैं, क्योंकि यह पर्यटन स्थलों में से एक है। यही वह स्थान है जहां पर गुफा है जिसमें सारा, इब्राहिम, इसहाक और रेबेका, याकूब और लिया और अन्य लोगों को भी दफनाया गया है। राहेल बेतलेह में दफनाई गई। ये सब लोग इसराइल में दफनाए गए क्योंकि उनकी आशा थी कि वे फिर से जी उठेंगे। मित्रों, यह एक सांसारिक आशा है। मित्रों, मैं समझता हूं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों यहां पर सारा का दफनाया जाना जरूरी था। अब हम आगे देखते हैं कि इब्राहिम गुफा को खरीदने की पहल करता है, तो आइए हम उनके वार्तालाप को उत्पत्ति 23 अध्याय उसके 10-12 पद में पढ़ें। एप्रोन तो वहीं हित्तियों के बीच में बैठा हुआ था, अतएव जितने हित्ती उसके नगर के फाटकों में से होकर जाते थे उन सब के सामने उसने इब्राहिम को उत्तर दिया, हे मेरे स्वामी, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ, अतः अपने मृतक को कब्र में रख। इब्राहिम ने उस देश के लोगों को झुककर नमस्कार किया। मित्रों, यहाँ पर इब्राहिम और यहाँ के रहने वाले लोगों की उदारता पर ध्यान दे, और विशेषकर एप्रोन पर। वे लोग निश्चय ही उस दिन बहुत विनम्र थे। हम समझते हैं कि ये लोग गुफा में रहने वाले लोग थे और हमेशा अपने साथ लाठी लेकर चलते थे और एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार रहते थे। किसी ने कहा, यदि इब्राहिम, इसहाक, याकूब और अन्य पुराने नियम के संत लोग जिनको इस अध्याय में याद किया गया है आज किसी बड़े शहर में होते और यहाँ से वापस जाकर अपने लोगों को बताते, तो मैं सोचता हूँ कि वे इस प्रकार कहते, क्या आप जानते हैं कि हमारे संतानों का एक समूह गुफावासी है। वे पूरी रीति से असभ्य हैं, वे असभ्य, गंवार और दया रहित हैं। मैं सोचता हूं कि वे हमसे कहते, परंतु हमारे लिए सौभाग्य है कि हम उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वे कितने नम्र थे, और इब्राहिम ने उस देश के लोगों को झुककर नमस्कार किया, या इसलिए किया क्योंकि वे लोग उसके प्रति नम्र थे। मित्रों, अब हम उत्पत्ति उसके 23 अध्याय और उसके 13 पद से 16 पद तक को पढ़ेंगे। कृपया आप सभी अपने बाइबल में इसे देखें जहां पर लिखा है, और उसने उस देश के लोगों के सामने एप्रोन से कहा, यदि तू चाहे तो मेरे सुन, उस भूमि का दाम मैं दूंगा, उसे ग्रहण कर, तब मैं अपने मृतक को वहां मिट्टी दूंगा। तब एप्रोन ने इब्राहिम को उत्तर दिया, हे मेरे स्वामी, मेरी बात पर ध्यान दे, उस भूमि का मूल्य तो चांदी के 400 शेकेल है, पर तेरे और मेरे बीच में यह क्या है, अपने मृतक को कब्र में रख। इब्राहिम ने एप्रोन की बात मान ली। इब्राहिम ने हित्तियों के सामने उतनी चांदी तौल दी, अर्थात व्यापारिक मान के अनुसार 400 शेकेल चांदी। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने भूमि और गुफा की कीमत उस समय के कानून व्यवस्था के अनुसार चुकाई। तब हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 23 अध्याय के 17 और 18 पद में, इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो ममरे के सम्मुख मकपेला में थी, भूमि और गुफा सहित जो उसमें थी, और जितने वृक्ष भूमि तथा उसकी सीमा में थे हित्तियों की उपस्थिति में, तथा उन सभी लोगों के सम्मुख जो उसके नगर के फाटक में से होकर जाते थे, इब्राहिम की संपत्ति होने के लिए सौंप दी गई। मित्रों, इसके पश्चात हम सारा के दफनाए जाने के बारे में देखते हैं, जिसे हम उत्पत्ति 23 अध्याय उसके 19 और 20 पद में पढ़ते हैं। इसके पश्चात इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को उस भूमि की गुफा में जो कनान देश के मकपेला में और ममरे अर्थात हिम्रोन के सम्मुख थी मिट्टी दी। इस प्रकार गुफा समेत वह भूमि हित्तियों के द्वारा कब्रिस्तान होने के लिए इब्राहिम को सौंप दी गई। मित्रों, स्पष्ट रूप से यह वही स्थान है जहां पर मस्जिद बनी है और आज यह हेब्रोन में है। यह मस्जिद को विश्व में दूसरे या तीसरे स्थान में मुस्लिम लोग रखते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। उनके बहुत सारे मस्जिद कैरो में भी हैं और अन्य जगहों पर हैं और यह उनमें अत्यंत सुंदर है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह तो मक्का है। मैं पूर्ण रीति से स्पष्ट नहीं हूं कि हेब्रोन की मस्जिद या यरूशलेम की मस्जिद दूसरे नंबर पर है, अन्यथा इनमें से एक तीसरे स्थान पर है। आप यहां पर ध्यान से देखें कि यह कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी अरबी अपने वंशज के लिए इब्राहिम की ओर ही आते हैं, क्योंकि इसी से इश्माइल भी उत्पन्न हुआ था। मित्रों, यहाँ पर 23 अध्याय समाप्त होता है, लेकिन अब हम अपने अध्ययन को जारी रखते हुए अध्याय 24 में प्रवेश करेंगे और इसकी विशेषताओं को भी हम देखेंगे। अब हम उत्पत्ति के 24 अध्याय में पहुंच गए हैं, जो इस पुस्तक के विभाजन का दूसरा मुख्य भाग है। पहला विभाजन अध्याय 1 से 11 है, जो चार मुख्य घटनाओं के विषय में चर्चा करता है, और इसका मुख्य और अंतिम विभाजन अध्याय 12 से 50 है, जो चार असाधारण चरित्र के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषकर अध्याय 12 से 23 तक हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं, जो विश्वास का पिता है, और अब अध्याय 24 से 26 में इसहाक का चरित्र है, जो इब्राहिम का एक प्रिय पुत्र है। इसहाक के जीवन में तीन मुख्य घटनाएं हैं और हमने दो घटनाओं को जो पहले ही देख लिया है, पहला था उसका जन्म और दूसरा इब्राहिम द्वारा उसको बलि चढ़ाना और तीसरा उसकी दुल्हन को प्राप्त करना। लोग कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है, उसका जन्म, उसका विवाह और उसकी मृत्यु। उसके पास दूसरे वाले को छोड़ और कोई भी चुनाव नहीं है और वह है विवाह। कभी कभी मनुष्यों के पास इसके लिए भी कोई चुनाव का अवसर नहीं मिलता है, परंतु यही तीन महान सत्य हैं जिसमें से होकर मनुष्य को जाना पड़ता है। मित्रों, अब हम इसहाक की कहानी में आते हैं कि कैसे इसहाक ने अपनी पत्नी को निश्चित किया। इब्राहिम अपने विश्वास योग्य दास को मेसोपोटामिया के हारान में इसहाक की पत्नी लेने के लिए भेजते हैं और आगे हम उसके दास की सफलता को देखेंगे कि कैसे उसने रेबेका को निश्चित किया। यह एक बहुत ही अद्भुत प्रेम कहानी है। यह इस बात को प्रकट करता है कि आप जिसे पसंद करते हैं परमेश्वर उसमें रुचि लेता है, आप उससे विवाह करें। परमेश्वर उस लड़की या लड़के में रुचि रखता है जिससे आप विवाह करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं। मित्रों, संसार में दो प्रथाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने मानव परिवार को दिए हैं। पहला है विवाह और दूसरा है मानव शासन। परमेश्वर यह अनुमति देता है कि मनुष्य स्वयं पर शासन करे। ये ही दो विश्वव्यापी प्रथाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये टूट जाती है या इनका पालन नहीं होता है तो समाज बिखर जाता है। परिवार किसी भी समाज की या संघ की रीढ़ की हड्डी होती है। परमेश्वर इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने विवाह की स्थापना की यह सोचते हुए कि परिवार समाज को मजबूत और स्थिर बनाएगा। और यही बात मानव शासन के लिए भी सत्य है। एक मानव शासक के पास इतना अधिकार होना चाहिए कि वह मनुष्य के जीवन का संचालन कर सके और उसको सुरक्षा प्रदान करे, और यही परमेश्वर का उद्देश्य है। क्योंकि मानव जीवन धार्मिक है, इसलिए परमेश्वर ने इस प्रकार की व्यवस्था हमें दी है। मित्रों, यहाँ पर मुख्य विषय यह है कि परमेश्वर आपकी प्रेम कहानी में रुचि रखते हैं, और यह अद्भुत है जब आप परमेश्वर को इसमें शामिल करते या मध्य में लाते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ने अपना पहला चमत्कार या आश्चर्य कर्म इस पृथ्वी पर गलील के काना नगर के एक विवाह समारोह में किया था। मैं यह नहीं जानता कि वह कितने विवाह समारोह में गए, परंतु वह एक समारोह में अवश्य गए। उत्पत्ति का यह 24वां अध्याय एक समृद्धिपूर्ण भागों में से एक है जो परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि यह हमें एक प्रेम कहानी को बताता है जो हमें वापस पीछे लेकर उन आरंभ के दिनों में पहुंचा देता है। यहाँ पर हम बड़े ही नाटकीय ढंग से इसहाक के लिए दुल्हन को निश्चित किया गया और यहाँ पर पुनः एक विशिष्ट आत्मिक तस्वीर को भी दर्शाया गया है। पहली बात हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जितने भी लोग इसहाक की दुल्हन ढूंढने में निश्चित करने में शामिल हैं उनके साथ परमेश्वर की अगुवाई है। यह एक ध्यान देने योग्य कथन है जिसे बताया या कहा गया है और समय समय पर इसे ठुकराया गया है कि कैसे परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। यहां तक कि उन प्रारंभिक दिनों में भी वे जो वहां रहते थे सामाजिक वातावरण में परमेश्वर की अगुवाई देख रहे थे और उसका अनुसरण कर रहे थे। हम में से कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि यह पाषाण काल में घटित हुआ जब मनुष्य गुफाओं में रहते थे और पूर्ण रीति से वे असभ्य थे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप इस पर रत्ती भर भी विश्वास ना करें। यहां पर उसका विवरण है जो बताता है कि मानव की शुरुआत इस प्रकार के मानव से नहीं हुई, बिल्कुल ही नहीं। और यहां पर हम परमेश्वर की अगुवाई को पाते हैं। यदि परमेश्वर उन लोगों के जीवन की अगुवाई कर सकते थे तो वे मेरे और आपके जीवन की भी अगुवाई कर सकते हैं। दूसरी बात जो इस अध्याय में ध्यान देने योग्य है वह यह है कि रिबका सीधे तरीके से अपना निर्णय लेती है। वह इब्राहिम के सेवक के साथ जाने के लिए तैयार है कि वह इसहाक की दुल्हन बने। यह एक अद्भुत बात है जिसे हम आगे देखेंगे जब हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे तब। इसलिए आप सब अपनी आंखों को खुला और कानों को सतर्क रखें। मित्रों, हमारा समय यहीं पर अब समाप्त होता है, इसलिए हम अगले कार्यक्रम में इसी सतर्कता के साथ फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु में आप बने रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।